नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियनचन में आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओ पहुंचे। प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर मुंबई में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। अंतिम संस्कार आज वर्ली में किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय उद्योगों से अपना दायरा बढ़ाने का आह्वान किया। दुर्गा पूजा उत्सव पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। फिनलैंड में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन में किरण जॉर्ज और लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। शारजाह में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज ग्रुप बी में बांग्लादेश का सामना वेस्ट इंडीज से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओ की 2 दिन की यात्रा पर वियनचन पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से आसियान देशों के साथ भारत के संबंध और अधिक मजबूत होंगे। लाओ के गृह मंत्री विलिया वोंगे वोदाखम ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी भारतीय समुदाय से भी मिले। प्रधानमंत्री ने लाओ में रामायण की प्रस्तुति फलक फलम या फरालक फराराम का अवलोकन किया। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री वियनचन में 21वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी सदस्य देशों तथा भागीदार देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उनका वियनचन में 19वें पूर्वी एशियाई सम्मेलन में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। प्रस्थान से पहले श्री मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे आसियान नेताओं के साथ समग्र सामरिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा सहयोग की दिशा में भावी रूपरेखा तैयार करने संबंधी बैठक में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वी एशिया सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता और समृद्धि के मार्ग में उत्पन्न चुनौतियों पर विचार करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाओस सहित इस क्षेत्र के साथ भारत के घनिष्ठ सांस्कृतिक और सभ्यागत संबंध है। उन्होंने कहा कि इन संबंधों को बौद्ध धर्म और रामायण की साझा विरासत से बल मिला है। उन्होंने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए लाओस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकों को लेकर उत्सुक है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी यात्रा से आसियान देशों के साथ उनके संबंध और सुदृढ़ होंगे। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान का 44वें और 45वें शिखर सम्मेलन और इनसे संबंधित अन्य बैठकें कल लाओ की राजधानी वियनचन में शुरू हो गई है। उद्घाटन सत्र में लाओ के राष्ट्रपति थामलोन सिसोलित ने आसियान देशों का शांति स्थिरता और सतत विकास के साझा लक्ष्यों की दिशा में काम करने का आह्वान किया। लाओ की अध्यक्षता में आयोजित आसियान सम्मेलन के साथ ही 23वें व आसियान चीन सम्मेलन और भारत आसियान तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों जैसे अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। जाने माने उद्योगपति और समाज सेवी रतन टाटा के अंतिम दर्शनों के लिए मुंबई में लोगों का टाटा लगा हुआ है। उनका 86वें वर्ष की उम्र में कल मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में आज हजारों लोग रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला जैसे गणमान्य लोगों ने रतन टाटा के अंतिम दर्शन लिए। छोटे बड़े सभी, जिनमें प्रमुख रूप से टाटा समूह के कर्मचारी भी शामिल है, रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। रतन टाटा का अंतिम संस्कार आज शाम वर्ली में किया जाएगा। टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रतन टाटा ने कल 86 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। महाराष्ट्र सरकार ने आज शोक दिवस घोषित किया है और सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने श्री रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने रतन टाटा के छोटे भाई नवल टाटा से बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार की ओर से उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में आज राजकीय शोक की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योगों से उनका स्तर और आकार बढ़ाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 119वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश के उद्योगों को बड़े सपने देखने होंगे और उन्हें वैश्विक बनाना होगा। उन्होंने कहा कि इस सपने को साकार करने के लिए चैम्बर्स और उद्योगों को एक साथ आने की जरूरत है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2000 से अधिक पुराने औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर कंपनी अधिनियम में सुधार किया है और 39,000 से अधिक नियमों के अनुपालन को आसान बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अगले 25 वर्ष में भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने का दृष्टिकोण, अनुभव और प्रतिबद्धता है। गृहमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 भारत के औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक निर्णायक वर्ष है। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी 23 वर्षों से लोकतांत्रिक तरीके से लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिरता सरकार के बिना नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है। उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री शाह ने कहा कि रतन टाटा ने भारतीय उद्योग जगत में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि श्री टाटा न केवल भारत और बल्कि विश्व के सम्मानित उद्योगपतियों में से एक थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय सिनेमा ने देश में एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री वैष्णव ने एक लेख में कहा कि सिनेमा विविधता और साझा भविष्यों की कहानियों से एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करने का शक्तिशाली माध्यम है। केंद्र सरकार ने आज राज्य सरकारों के लिए 1,78,000 करोड़ रूपये से अधिक की कर राशि जारी की। वित्त मंत्रालय के अनुसार आगामी त्योहारों और राज्यों के पूंजीगत व्यय में तेजी लाने तथा विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक अग्रिम किश्त जारी की गई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पुडुचेरी के हिजब उत्र तहरीर से जुड़े उन मामले में एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभिकरण ने बताया कि उन्होंने राज्य के हिजब उत्र तहरीर के सरगना फैजुल रहमान को गिरफ्तार किया है। हामिद हुसैन और उसके कई सहयोगियों ने चेन्नई में राष्ट्र विरोधी विचारों को बढ़ावा देते हुए अलगाववादी विचारधारा फैलाने की साजिश रची थी। पूरे देश में दुर्गा पूजा उत्सव धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लोग दुर्गा पूजा समारोह में उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। मां दुर्गा की पूजा करने के लिए राज्य भर के पंडालों में बड़ी संख्या में भक्त जुट रहे हैं। असम में इस वर्ष 4,000 से अधिक दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं। पूजा समितियों ने विभिन्न विषयों के आधार पर लोगों के बीच रचनात्मक संदेशों का प्रसार करने के लिए अस्थायी दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किए हैं। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में कल रात दुबई में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 82 रनों से हराकर विश्व कप के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ने पहले विकेट के लिए 77 गेंदों में 98 रन जोड़े। शेफाली ने 40 गेंद पर 43 रन बनाए और स्मृति ने 38 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 37 गेंद में 52 रन बनाकर भारत को 172 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 173 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 90 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की ओर से कविशा दिलहरी ने सर्वाधिक 21 रन बनाए। भारत की ओर से गेंदबाजी में अरुंधति रेड्डी और आशा शोभना ने 3-3 विकेट लिए। रेणुका सिंह ठाकुर ने 2 विकेट झटके। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ग्रुप ए में रन रेट के मामले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से ऊपर चली गई है। इस हार के साथ ही श्रीलंका आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। भारत का अंतिम मुकाबला 13 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश का मुकाबला वेस्टइंडीज के साथ भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से सारजा में खेला जाएगा। फिनलैंड के वांटा में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन और किरण जोश पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। किरण ने कल विश्व के 25वें नंबर के खिलाड़ी ताइवान के वांगजू वी को सीधे सेंटों में 23, 21 और 21, 18 से हराया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।